जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज नरंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चारे यमुना जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव रे जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरवर धारे जय गोपी जन रे यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज विहारे जय राधा माधव जय राधा हरे राधा रस बिहारी राधे जय राधा जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय तनित गौर हरिबोल 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 और जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभु जय ओम विष्णुपाद परमहंस विरजकाचार्य जगत गुरु भाई श्रीले श्री भक्ति वेदांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैश्ववृंद की जय नामाचार श्रील हरिदास ठाकुर की जय ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय सुमेध भक्त वृंद की जय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण ॐ अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। यत् कीर्तनं यत् अस्मरणं यदीक्षणं यदवन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसि नमो नमः। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैतवादाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवतम् स्कंध 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 32।
नारद उवाच इथं पुरंजनं नारी याचमानं अधीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ति वीर मोहिता। नारद उवाच इथं पुरंजनं नारी याचमानं अधीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ति वीरमोहिता। नारद उवाच इथं पुरंजनं नारी याचमानं अधीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ति वीरमोहिता। इथं पुरंजनं नारी याचमानं अधीरवत् अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ति वीरमोहिता।
Thank you.
माताजी, कोई वैष्णवी? नारद वाचा। नारद मुनि ने कहा एथाम, इसके पश्चात पुरंजनाम, पुरंजन को, नारी स्त्री, याचमानाम, याचना करते हुए, अधीरवत, अत्यंत अधीर, अभ्यनंदता, उसने संबोधित किया तम, उस वीरम, वीर को, हसंती, हंसते हुए, वीर, हे वीर, मोहिता, उससे आकृष्ट होकर। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य अनुवाद। नारद ने आगे कहा, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा, तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। तात्पर्य, इस घटना से हम यह समझ सकते हैं कि जब मनुष्य आक्रांत हो जाता है, भयभीत हो जाता है, डर जाता है और स्त्री से प्रणय याचना करने लगता है, तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है। भागवतम के 5-5-8 श्लोक में कहा गया है, इस क्रिया को पुंस स्त्रिया मुथनी भाव में तम कहा गया है। यह आकर्षण विषय जीवन के स्तर पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार कामोत्तेजना भौतिक बंधन का आगम स्थल है। अतः यह बद्ध जीवन अर्थात भौतिक संभोग का आगम स्थल ही आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है या फिर भौतिक चेतना में बदल जाती है और इस प्रकार से मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रस्तुत श्लोक में नारद जी स्त्री पुरुष के आपस में आकर्षण का वर्णन किए हैं कि किस प्रकार पुरुष स्त्री को देख करके आकृष्ट होता है और स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट होती है। और इस आकर्षण में मुख्य पुरुष के या स्त्री की इंद्रिय तृप्ति है। अर्थात नारद जी राजा प्रचीन वरही को जो कर्मकांड में आसक्त हैं, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, भोगों में काफी आसक्त हैं, भोगों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वैसे आसक्त राजा को नारद जी राजा प्राचीन वरही के ही इतिहास को अप्रोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पुरंजन और पुरंजनी की गाथा को श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन, जिस शरीर में तुम आसक्त हो उसे ऊपर उठो। अर्थात नारद जी विषय रस का वर्णन करते हुए, विषय जीवन का वर्णन करते हुए, भौतिकवादी जीवन का वर्णन करते हुए समाज को या पुरंजन को या राजा प्राचीन वरही को ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे राजन, विषय में आसक्त मत हो, तुम श्री कृष्ण के अंश हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक नहीं हो, इसलिए भौतिक रस में आसक्ति मत करो, अध्यात्म रस में आओ, दिव्य रस में आओ और भौतिक वासना से ऊपर उठो, जागो जागो। इसलिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव जाग गौरा चंद बोले, कतन इंद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। कितने दिनों तक विषय रस की वासना में डूबे रहोगे, विषयों को चखते रहोगे? ब्रह्मांड भ्रमित कौन, ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड में भ्रमते रहे, कभी कुकर बनकर, कभी सुकर बनकर, कभी देवता बनकर, कभी दानव बनकर, कभी जलचर, कभी थलचर, कभी नवचर, और इस जीवन में भी स्त्री पुरुष बन करके स्त्री के साथ विषय रस को चख रहे हो? इसे ऊपर उठो, जगो। जागने का मतलब ये नहीं है कि हम जगे हैं सोए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। जागने का अर्थ है, रामायण में वर्णन है कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब विषयों से बैराग हो जाए और भगवान श्री कृष्ण में आसक्ति हो जाए, तब उसको कहा जाता है जगना, विषय रस चखना छोड़ दो, छोड़ दो, इसे ऊपर उठो। तो इसने इसे जागना कहा गया है। तो वास्तव में हम सभी कृष्ण के यंत्र हैं, लेकिन भूल करके, आध्यात्मिक रस को छोड़ करके इस भौतिक रस में बुड़े हुए हैं। तो पुरंजन राजा प्राचीन वरही को पुरंजन का इतिहास सुना करके जगा रहे हैं और विषय जीवन का वर्णन करें, विषय रस का वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए विषय रस क्या है, जिसके लिए मानव व्यग्र रहता है। नारद उवाच, नारद जी ने कहा, नारद जी स्वयं भक्ति के आचार्य हैं और अनुभवी आचार्य हैं, ये भी कई एक जन्म ले चुके हैं और ये भी विषय रस को चख चुके हैं। इस कल्प में नारद जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इनको अनुभव है, तो अपनी अनुभूति प्रदान कर रहे हैं। व्यक्ति को अनुभवी होना चाहिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श तथा उसका भोग करने के लिए अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा, तो अब वाला भी उसे आकृष्ट हो गई। इथम पुरंजनम नारी, इथम का अर्थ है इसके पश्चात, किसके पश्चात? श्री श्री राधारास बिहारी जी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। इसके पश्चात माने किसके पश्चात? पुरंजन पुरंजनी से कहता है, हे सुंदरी, जब मनुष्य स्त्री के प्रति आकृष्ट होता है, इथम इस प्रकार कह रहा है, क्या कहता है? हे सुंदरी, सुउंद माने सुंदर का अर्थ है पिघल जाना, वह पुरंजनी को देख करके पिघल गया, अर्थात उसके प्रति आकृष्ट हो गया। हे सुंदरी, हे सुंदर भावों तथा आंखों से युक्त, तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है और तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है, अरे तुम तो लक्ष्मी जैसी लग रही हो, पार्वती जैसी लग रही हो, भले वो पार्वती जैसी लगे, लक्ष्मी जैसी न लगे, लेकिन उसको आकृष्ट करने के लिए सुंदर वचन का प्रयोग कर रहा है, मधुरभाषी का प्रयोग बोल रहा है राजा। हे सुंदरी, ऐसा कहने से कौन नारी न आकृष्ट हो जाए? जो नारी सुंदर न हो फिर भी उसको सुंदरी कहिए, वो तो खुश हो जाएगी। करें कि हे सुंदरी, अरे तुम मेरी ओर तो देखो, हंसो, सिर को ऊपर करो और मुझे देखो। स्त्री को देखना और स्त्री पुरुष को देखे, यही भौतिकवादी है। लोग कहते हैं फिल्मी दुनिया में, हम तुम पे मरते हैं, हम भी तुम पे मरते हैं, मुझे प्यार से देखो। राधा गोविंद महाराज एक बार कथा कर रहे थे जामिल की, तो उसमें बोले कि लोग कहा करते हैं क्या, जब शादी होती है या प्रेम होता है आपस में लोगों का, तो कहते हैं जैसे आकाशवा में उड़े रे जहजिया, जैसे आकाशवा में उड़े ले जहजिया, वैसे उड़ब तोर साथ ये संगतिया। उड़ती है, घूमती है, फिरती है, मार्केटिंग जाती है, विहार करती है, इसके बाद फिर क्या हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, तिलाक हो जाता है। पहले तो चंद्रमुखी बोलता है व्यक्ति, हे चंद्रमुखी, हे कमल नयनी, हे सुंदरी, और बाद में फिर क्या हो जाती है, सूर्यमुखी हो जाती है। सूर्यमुखी मतलब ताप देने वाली, चंद्रमुखी मतलब शीतलता प्रदान करने वाली। अब जब उसका दूसरा पुरुष से संपर्क हो जाता है तो फिर क्या हो जाती है, ज्वालामुखी हो जाती है। आपकी हालत खराब कर देती है, ऐसी है सुंदरी। तो हे सुंदरी, सुंदरी कहकर पुकार रहे हैं, पुरंजनी को सुंदरी कहकर पुकार रहे हैं। इथम, इस प्रकार, इथम शब्द का मतलब एक इस प्रकार है, जो पहले ऐसे शब्दों से, मोहित शब्दों से पुरंजनी को मोहित कर रहे हैं, देख करके आकृष्ट हो रहे हैं। पुरंजनम, पुरंजन, पुरंजन शब्द का अर्थ बहुत सुंदर है, नारद जी कह रहे हैं पुरंजनम, पुरम जन, पुरम कहा जाता है इस शरीर को, ये शरीर भी पूरी है, नगर है, और इसके अंदर जो रहता है, पुरम माने इस शरीर के भीतर, और जन माने जीवात्मा, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा रहता है उसको पुरंजन कहा जाता है। और पुरंजन का अर्थ होता है देह को भोगने वाला, देह को भोगने वाला, इस देह को चखने वाला, अदर सुधा का पान करने वाला, मांस की लोथड़ा को पकड़ने वाला, खाना, सोना, मैथुन करना, रक्षा करना, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, इस देह को भोगना, उसको पुरंजन कहते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि सारा जीव पुरंजन है, आत्मा इस नगरी में रह रहा है, इस नगर में रह रहा है, पुरंजन भोग रहा है। क्या भोग रहा है, विषय रस को चख रहा है। क्या चख रहा है, विषय रस को। विषय का अर्थ क्या होता है, विषय का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति के साधन, इंद्रिय तृप्ति के साधन को विषय कहा जाता है। वो विषय कितने हैं, पांच हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं। इससे मनुष्य इंद्रिय तृप्ति करता है। पांच विषय रस हैं, छठा रस कोई नहीं है इंद्रिय तृप्ति के अलावा। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए ये विशेष रस हैं, भौतिक रस, आध्यात्मिक रस नहीं, भौतिक रस। तो जीव भगवान को भूलकर इसी रस में आसक्त हो गया है। तो जो इस रस को चखे, अपने जीवन का सारा समय भौतिक रस को ही चखने में बिता दे, उसको पुरंजन कहा जाता है। तो प्रत्येक जीव पुरंजन है। वो राजा प्राचीन वरही तो है ही, उनको प्रत्यक्ष रूप से सुना रहे हैं कि एक राजा पुरंजन थे, उसकी स्त्री थी पुरंजनी, और उसमें आसक्त होकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिए और अंत में स्त्री बने। जो विषयों में आसक्त होता है, जिसमें जिसकी मति लगी रहती है जीवन पर्यंत, वह व्यक्ति उसी चीज को प्राप्त होता है। तो ऊपर उठे, हम सभी पुरंजन है, जीव पुरंजन है। क्यों पुरंजन है, इसलिए कि जीव भगवान को भूल गया है। कब से भूला है, कृष्ण भूल से जीव, अनादिर बहिर मुख, अतएव माया तारे देई संसार धूप। अनादिकाल से जीव भूला हुआ है, माया मुग्ध स्वतः नहीं, माया मुग्ध स्वतः जीव, कृष्ण नहीं ज्ञान, जीवे रे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। जीव स्वतः माया से ग्रसित है, इसको ज्ञान नहीं है। तो जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान ने वेद और पुराणों को रचा बनाया। जीव इसको सुने और इस माया से ऊपर उठे। तो पुरंजन जो इस नगर में निवास करे वो है पुरंजन। तो इथम पुरंजनम नारी। पुरंजन किस में आ सकता है? नारी में आ सकता है। नारी कैसी है? नारी कहा जाता है नौ अरी इति नारी, जो किसी से द्वेष न करे, ईर्ष्या न करे, किसी का कोई शत्रु न हो, उसे नारी कहा जाता है। और नारी में स्त्री, स्त्री अस्थाय शब्द से बना है और स्त्री का शाब्दिक अर्थ होता है लज्जा। जिसके पास लज्जाशीलता हो उसको हम स्त्री बोलते हैं। और स्त्री का अर्थ संग्रह करना भी होता है, जो गप सप में ज्यादा लगी रहती है, ज्यादा बातें करती है, उसको भी स्त्री बोलते हैं। और स्त्री का अर्थ ये भी होता है जिसे पूरा संसार विस्तृत होता है। तो नारी, नारी का यह पहचान है कि उसके लंबे लंबे केश होते हैं और उसके अस्तन होते हैं, भग होते हैं, और वह गर्भ धारण करती है और उसके शरीर में रोमे नहीं होते हैं। अब पुरुष तो रोमटा वाले होते हैं जिनके शरीर में रोमे होते हैं, बाल होते हैं, लेकिन नारी के शरीर में बाल नहीं होते, सिर पर ही बाल होते हैं, वो भी बड़ा आकर्षक होते हैं, नागिन जैसी उनके बाल। तो नारी को भगवान ने विशेष रूप से सौंदर्य प्रदान किया है। उसका नगर कैसा है? पुरुष हो चाहे स्त्री, जो भी है, जीवात्मा इस नगर में रह रहा है, तो नगर कैसा है देखिए। यह नौ द्वार वाला नगर है, नौ द्वार वाला नगर है। और कैसा नगर है? हाड़ मांस रक्त चर्बी मल मूत्र का नगर है। जैसे नगर का दरवाजा देखिए, दो आंख दो नाक दो कान मुख सात हुए, और दो नीचे मुतिंद्रियां और मल द्वार, ये नौ दरवाजे हुए। नौ दरवाजों से क्या निकलता है? आंख से कीचड़, नाक से नेटा पोटा, कान से खोट, बहता भी है कान, मुख से रोज आप मुंह को साफ करते से गंदगी निकलती है, मुतिंद्रिय से मूत्र, मल द्वार से मल निकलता है, मतलब गंदगी। और देखिए कैसा नगर है, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जब हलवा पूरी रसमलाई चमचम खाते हैं तो इसके अंदर जाते ही वो बिष्टा बन जाता है। हाँ, और क्या, जब शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो उसे रक्त बहने लगता है, अगर उसकी सेवा न किया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो इस शरीर के जितने भी दरवाजे हैं देख लीजिए, आंख से निकला कीचड़, कोई अच्छी वस्तु निकली? कोई अच्छी वस्तु नहीं निकलती है इस शरीर से, मल का गोदाम है। नौ दरवाजा वाला जो शहर है, नगर है, जो पुरी है, जिस पुरी में सारे प्राणी आसक्त हैं, अपने जीवन का सारा समय बर्बाद कर देते हैं, और इस पुरी को बोलते हैं ये ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, हैंडसम है। क्या हैंडसम है? इस शरीर को कहा जाता है, इस शरीर के सभी पार्ट को अलग अलग कर दिया जाए, हैं, बाल को अलग कर दिया जाए, चाम को अलग कर दिया जाए, नख को अलग कर दिया जाए, हड्डी को अलग कर दिया जाए, रक्त को अलग कर दिया जाए, चर्बी को अलग कर दिया जाए, अंतड़ी को अलग कर दिया जाए, मल मूत्र को अलग कर दिया जाए, सबको, और एक जगह रख दिया जाए और कहिए कि इसको किस करो, आलिंगन करो, चुंबन करो, कोई करेगा? नहीं करेगा, घृणा करेगा उससे, सोचिए। और लेकिन भगवान की माया ऐसी प्रबल है, भगवान ने इस नगर को ऐसा बनाया है कि इसमें ऊपर से चमड़ी लगा दिया है, चाहे गोरी चमड़ी हो चाहे काली चमड़ी हो, इसकी अंदर तो मल मूत्र पीप रक्त सब भरा हुआ है, और उसी को देकर के मानव आकृष्ट है, चाहे स्त्री पुरुष के प्रति हो चाहे पुरुष स्त्री के प्रति हो, और उसी को किस कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या न कर रहे हैं, जीवन का सारा समय बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं हे प्रंजन, हे प्राचीन वरे, हे प्रंजन, अरे ऊपर उठो, हे राजन इसे ऊपर उठो, ये तुम्हारा वास्तविक रस चखना नहीं है। तो स्त्री को भोग करता है मनुष्य, कैसे भोग करता है सोचिए, नारी का उपभोग करता है, शब्द शब्द कहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग गीत गाते हैं, गाते हैं ना गीत, अंगना में आइल बहार भौजी बहुत से गीत गाते हैं फिल्मी वाले एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, दोनों फिल्मी के गाने शब्द बोलते हैं, सुनते हैं शब्द रूप, रूप को देखते हैं, ये रूप बड़ा सुंदर है, आकर्षक है, और रस, रस क्या है उसका, वही थूकलार को चाटते हैं वही उसका रस है जिसको चाटते रहते हैं अदर रस का पान करते हैं, थूकलार को चटना वही अदर रस का पान करना है। शब्द रूप रस गंध, गंध मतलब सेंट लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, जो भी हो, इत्र इत्यादि सूंघते रहते हैं क्योंकि शरीर दुर्गंधित होता है, और स्पर्श जो उसके शरीर के ऊपर मांस के जो लोथड़ा रहते हैं वक्षस्थल पर उसको स्पर्श करते हैं, ये है इंद्रिय तृप्ति के साधन। वो है साक्षात नारी, वो है साक्षात स्त्री जो इंद्रिय तृप्ति का साधन है। तो गृहस्थ जीवन में लोग ऐसा साधन रखते हैं, ये ब्रह्मचारी के लिए नहीं है भाई, याद रखें, नारद जी सावधान करा रहे हैं, बहुत आकर्षक है नारी, याद रखें इस बात को। जिस समय ब्रह्मा जी ने इस जगत की सृष्टि की, तो पहले भगवान ब्रह्मा जी ने पुरुषों की सृष्टि की, तो पुरुष भागने लगे, कह सृष्टि करो, तो नहीं किए, चारों कुमारों को कहे सृष्टि करो, गृहस्थ धर्म को अपनाओ, कहे नहीं अपनाएंगे, निर्धर्म को अपनाए, संन्यास मार्ग को अपनाए, देखिए कि तो भाग रहे हैं इधर उधर, तब नारी को वे रचे, नारी की रचना किए। तो याद रखें जब भगवान ने नारी को रचा तो 16 आना की सुंदरता में 8 आना नारी को प्रदान कर दिया, 8 आना नारी को दिया, बचा 8 आना, 8 आना में 4 आना पुरुष को दिया और 4 आना बाघ बकरी जो भी अन्य जीव हैं उसको प्रदान किए। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्त्री है, जो नारी है, उसमें अधिक आकर्षण है। कहते आकर्षण क्या है, आकर्षण ये है कि एक तो उसके शरीर में रोएं होते नहीं, उसका शरीर कोमल होता है, और उसके शरीर के ऊपर वक्षस्थल पर दो मांस के लोथड़े होते हैं, और उसकी नाभि जो होती है कमर पतली बहुत आकर्षक होती है, जो नाभि है वो आकर्षक है। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने लिखा है नारी का अगला भाग वक्षस्थल और नाभि ये बहुत आकर्षक होते हैं, इसे कोई भी पुरुष स्त्री को देखता है तो वह उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, अर्थात उसको देखकर उसका मन खराब हो जाता है। यह है नारी के पास आकर्षण, याद रखें पुरुष के पास ये नहीं है। तो मनुष्य देख करके लोभित हो जाता है, स्त्री को भगवान ने विशेष सौंदर्य दिया है। यहां भी देखिए पुरंजनी नहीं बोल रही है, पुरंजन बोल रहे हैं हे सुंदरी, वो तो चुपचाप है, वो तो चुपचाप मुस्कुरा रही है और बार बार अपने स्तन को ढक रही है, बार बार ऐसे सिर पर लुगा, सिर पर कपड़ा डालना, अपने स्तन को वक्षस्थल को ढकना, ये कामी स्त्री का लक्षण है। याद रखने का, बहुत सी ऐसी स्त्रियां आती हैं जो इस प्रकार का मनोभाव प्रदर्शित करती हैं, तो समझ जाना चाहिए कि कामी है, कामनी तो है ही वो, माने उसके अंदर भी भोग भोगने की इच्छा है, तो पुरंजन समझ गया ये तो चतुर राजा है, हे सुंदरी, तो उसकी मनोवृत्ति को जान गया। स्त्री मतलब लज्जा, लज्जा तो रहती ही है। तो स्त्री का मतलब क्या होता, स्त्री जो होती है वास्तव में इस संसार की, याद रखें, सबसे बड़ी मदिरा है। मदिरा समझते हैं, नशा करने वाली, मदिरा को पीने से नशा होता है, हाँ। लेकिन स्त्री रूपी मदिरा को यदि आप देखेंगे, खाली देखने से आपको नशा चढ़ जाती है, पागल हो जाता है मनुष्य, याद रखें, क्योंकि स्त्री उसकी बुद्धि को हर लेती है अपने अंग प्रदर्शन करके, मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए वैदिक शास्त्र कहता है, माताओं से ये निवेदन करता है, हे मातृवृंद, आप अपने वक्षस्थल भाग को और नाभि के भाग को ढक करके रखें, कहीं भी जाएं, सभा में जाएं, कीर्तन में आए, कहीं भी जाएं, सत्संग में जाएं, तो इस भाग को आप कवर करके रखें, ताकि अगर दूसरा पुरुष देखेगा तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को दूषित न करें, मर्यादा में रहें, लज्जा में रहें, निर्लज बन करके न आए, शिक्षा दी जाती है। इसलिए स्त्री को इस भाग को अगला जो पर्सन है वक्षस्थल से लेकर के कमर तक इसको ढक करके रखना चाहिए। लेकिन आजकल की स्त्रियां ऐसी निर्लज होती है, वो पुरंजनी खुलम खुला छोड़ देती है, आह्वान करती है विज में। ये क्या है? अंग प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? विषय रस को चखना, आओ मुझे खाओ। ऐसा है यह संसार। याद रखें, यह संसार मैथुनागार है, मैथुन डिपार्ट का हेड है यह संसार, और मैथुन से ही जीव को यहां बंदी बनाया जाता है, दंडित किया जाता है। जब तक वह मैथुन में रहेगा, जब तक वह हाड़ मांस की लोथड़ा को पकड़ता रहेगा, स्पर्श करता रहेगा, तब तक वह 84 का चक्कर खाता रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ा रहेगा। कभी गधई के गर्भ में जाएगा, कभी सुकरी के गर्भ में जाएगा, उसका गर्भवास बंद नहीं होगा, दुखों पर दुख झेलता रहेगा। तो स्त्री इस संसार का सबसे बड़ा बंधन है। राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर एक दृष्टांत देते हैं, बताए हैं कि एक बार दो मित्र थे, नदी के तट पर बातें कर रहे थे। तो जिस नदी के तट पर दोनों मित्र थे, तो नदी में तो जल की धारा प्रवाहित हो रही थी, तो उसमें एक स्त्री बहती जा रही थी और उसके केवल बाल दिख रहे थे, और अंग तो नहीं दिख रहे थे, उसके केवल बाल दिख रहे थे। तो जब बाल को देखे, तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, मित्र देखो वो स्त्री बहती जा रही है, उसको बचाओ, रक्षा करो, उसको निकाल दो बहती हुई धारा से। वह मित्र कूद पड़ा और गया उसके पास, जाकर के उसके बाल को पकड़ा। जब उसके बाल को पकड़ा तो वह स्त्री नहीं थी, वो तो भाल थी, समझे? उस भाल ने उस पुरुष को पकड़ लिया। तो उस मित्र ने कहा, अरे मित्र यह स्त्री नहीं है, तो भाल है, भाल। तो मित्र ने कहा, छोड़ दो, छोड़ करके आ जाओ। तो उसने कहा, मैं कैसे छोड़ू, इसने तो मुझको पकड़ लिया, ये मुझे नहीं छोड़ रही है, मैं कैसे आऊं। स्त्री जिसको पकड़ लेती है ना, उसको छोड़ती नहीं है। पहले तो पुरुष पकड़ने के लिए जाता है, और बाद में जब वो पकड़ लेती है तो आप उसके चंगुल से नहीं निकल सकते, निकलना बड़ा मुश्किल है। यही संसार की दशा है। याद रखें महाराज, ये भी एक बड़ी सुंदर बातें कहते हैं, इस जगत में स्त्रियां नहीं होती ना तो सारे मनुष्य वैकुंठ चले जाते। हरे कृष्ण, मतलब बंधन का कारण। लेकिन याद रखें, भी स्त्री को मां कहा जाता है, हैं? माता के नाम से पुकारा जाता है। माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। स्त्रियों में भी कैटेगरी है, माया जो बंधन लगा दे और भक्ति जो उस बंधन को छुड़ा दे। तो ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो मनुष्य को जकड़ करके रखती हैं, और कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं भक्ति महारानी की अनुगामनी, जो उस माया से भी उसे निकाल देती हैं। वैसी स्त्रियों को धन्यवाद है। बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो अपने पुरुष को भगवान की भक्ति नहीं करने देती है, क्यों तिलक लगा रहे हैं, क्यों कंठी लगा रहे हैं, इसको छोड़ो, क्लब में चलो, यहां चलो, वहां चलो, विषय रस का सेवन करो, इस चक्कर में क्या पड़े, इसमें क्या रखा है, छुड़ा देती है, पुरुष को तंग करके रख देती है। लेकिन बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो पुरुष को भगवान की भक्ति में लगा देती हैं, स्वयं भी सेवा करती हैं और अपने पति को भी लगा देती हैं। लेकिन याद रखें, विषय इतना बलवान है, विषय इतना बलवान है कि मनुष्य इसमें इतना असक्त है कि विषयों को जल्दी छोड़ता नहीं है। सभी लोग तो तुलसीदास नहीं है, सभी लोग तो कालिदास नहीं है, सभी लोग तो बिल्वमंगल ठाकुर नहीं है। तुलसीदास की स्त्री ने तो फटकार मारा, वो तो छोड़ दिए। बिल्वमंगल ठाकुर को भी उस वेश्या ने फटकार मारा, छोड़ दिए। कालिदास ने भी छोड़ दिया, उनको तो ज्ञान हो गया। लेकिन ऐसे पुरुष जो होते हैं बिल्कुल निर्लज, इनको तो ज्ञान ही नहीं होता है कितना वो लात मारती रहे, याद रख। लेकिन हां, जब माया लात मारती है ना, बोलते हैं विद्वान लोग, तब उस व्यक्ति को संत की बात लगती है, शास्त्र की बात लगती है, ऐसे नहीं। इसीलिए भक्ति महारानी की जो अनुगामनी स्त्री हैं, जैसे कुंती महारानी हैं, देवहूति जी हैं, यशोदा मैया हैं, सीता जी हैं, राधा रानी हैं, गोपियां हैं, अब देखिए ये सब भक्ति महारानी की अनुगामनी है। इनको देखने से ही जीवन आदर्श में हो जाता है। और एक तरफ मेनका है, सुपनेखा है, पूतना है, हैं? और मंत्रा है, ये सब भड़कीली स्त्रियां हैं, नरक में ले जाने वाली हैं, प्रदूषण फैलाने वाली हैं, तो स्त्रियों में भी कैटेगरी है। तो उस माता को वंदन किया जाता है जो माता भक्ति भावना से झुकते हैं, और उस स्त्री की निंदा की जाती है जिसके पास भक्ति नहीं है। और दूसरी बातें भी समझ जाए, पुरुष जिसमें आसक्त होता है, जिसे बुद्धि खराब होती है, ऐसे नारी की भी बुद्धि कम होती है, ये शास्त्र बोलता है भाई। क्यों बुद्धि कम होती है? इसलिए कि नारी को कोई भी व्यक्ति फुसला लेता है, वो भोली भाली होती है। आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी कोई दूसरा पटा लिया, और ज्यादा व्यवधान उपस्थित करेंगे उसको, आपकी जान मरवा देगी। थोड़ी सी सुख के लिए पति की जान मरवा देती है, भाई की जान मरवा देती है, सोचिए जान ले देती है। स्त्री जान लेवा है, मृत्यु की कारण है, शास्त्री ऐसा बोलता है। ऐसी ऐसी भी स्त्रियां होती हैं, इसलिए इस विषय में सावधान रहना चाहिए। वो मांस की लोथड़ा है, आकर्षक है, लुभावना है। आप इस स्तर पर आइए कि हम अध्यात्मवादी हैं, हम भगवान की यंश हैं, हमारा वो विषय नहीं है, इस विषय रस को मत चखो। लेकिन इस संसार का केंद्र बिंदु है क्या? विषय रस, स्त्री का आकर्षण, यही पुरंजन की दुर्बलता है, यही राजा प्रचीन बरही की दुर्बलता है। उसमें सब गुण है, लेकिन दुर्बलता यही है कि जब स्त्री को देख लेता है तो उसके बिना उसे रहा नहीं जाता, उसको चखना चाहता है, और जीवन का सारा समय व्यतीत कर दिया। इसलिए नारद जी को दया आ गई, इसे ऊपर उठे, कब तक चखते रहोगे, अनेक जन्मों में चखे। लेकिन याद रखें, माया बहुत बलवान है। जो कथा कहता है, जो अपने को विद्वान समझते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, तो विद्वानों को माया ज्यादा पछाड़ती है। रामायण में वर्णन आता है, जो ज्ञानी कर चित्त पहरई, बरी आई विमोह बस करी। ज्ञानियों को चित्त को जबरदस्ती खींच लेती है। शिव चतुरानंद जाहि डेराही, अपर जीव कहीं लेखे माए। शिव जी को खींच लिया, ब्रह्मा जी को खींच लिया, अपर जीव तो साधारण जीव किस गिनती में है। प्रभु माया बलवंत भवानी, को नहीं मोह जगत यश ज्ञानी। प्रभु माया बलवंत भवानी, हे भवानी, शिव जी बोल रहे हैं, कौन है मोह जगत यश ज्ञानी। अरे कौन ज्ञानी नहीं मोहित हो गया स्त्री को देखकर, सौंदर्य को देखकर के। संभलो, अपने को संभालो, कब तक इस विषय रस का सेवन करते रहोगे, चखते रहोगे, थूकलार कब तक चाटते रहोगे। अरे भक्ति रस को चखो, दिव्य रस का पान करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम आध्यात्मिक हो, तुम्हारा आध्यात्मिक भोजन है, भौतिक भोजन नहीं है, इसलिए ऊपर उठो। जिस समय वेद व्यास जिस समय भागवत लिख रहे थे, अयाति महाराज के प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है। वेद व्यास जी के शिष्य थे जयमिनी, जब वेद व्यास जी लिखे याति महाराज के प्रसंग में कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नावी विक्त स्नो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। वेद व्यास जी ने लिखा कि व्यक्ति को माता के साथ, बहन के साथ और पुत्री के साथ, दुहित्रा पुत्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं कि वो जबरदस्ती पुरुष को खींच लेती है, मन को आकर्षित कर लेती है। तो जैमिनी ने कहा, हे गुरुदेव, आप कहते विद्वांसम अपिकर्षति, विद्वानों को भी खींच लेती है, विद्वान को कैसे खींचेगी? विद्वान तो जानता है कि ये माया है, वो तो इसको अच्छी तरह से जानता है, वो कैसे आकर्षित होगा? ये बात आपने अच्छी नहीं लिखी, यहां लिखिए विद्वांसम अपि न कर्षति, विद्वानों को आकर्षित नहीं करती है। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा बिल्कुल बात सत्य है, ये हमारी समझ में बातें नहीं आ रही है। हम विद्वान हैं, हम जानते हैं कि माया है, ये हाड़ मांस भी विरक्त का लोथड़ा है, हैं? तो इसको हम क्यों छुएंगे, हमको तो मालूम है, इसे हमको कैसे आकर्षित करेगी? क्योंकि नहीं, माया प्रबल आकर्षित करती है, इंद्रियों को खींच लेती है। जैमिनी ने कहा, हम नहीं मानते। तब वेद व्यास जी ने कहा, बेटा समय आएगा तो तुझे पता चल जाएगा, माया बहुत बलवान है। समय में परिवर्तन हुआ, वेद व्यास जी ने माया रची, बहुत सुंदर दृष्टांत है। और आकाश में बादल गड़गड़ाने लगे, जल बरसने लगा और वेद व्यास जी स्त्री का रूप धारण कर लिए, बहुत सुंदर स्त्री बन गए और साथ में उनकी सखियां भी थी। संध्या का समय था, जल बरस रहा है, वह स्त्री संध्या समय में जैमिनी के पास आई, सूर्यास्त हो गया था, जल बरस रहा है, उसका शरीर पूरा भींगा हुआ है और साड़ी भी ऐसी पहनी थी कि उसकी अंग प्रत्यंग सब दिख रहे थे, वक्षस्थल नाभि सब दिख रहे थे, जो आकर्षक स्वरूप हैं। तो देखा, वो गई जैमिनी के पास, कहा महाराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मैं एक अबला नारी हूं और मैं अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण करने आए थे, इससे वर्षा के कारण आंधी तूफान के कारण मैं अपनी सखियों से भी छोड़ गई, मैं अकेली पड़ गई और सूर्यास्त हो गया, ये रात्रि का समय है, अब मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप अपने आश्रम में मुझे आश्रय दें। जैमिनी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ कोई स्त्री नहीं ठहरती है, तुम यहाँ से चली जाओ। तब वो स्त्री बोलती है, हे मुनिवर, मैंने शास्त्रों में सुना है कि जो व्यक्ति भगवान के शरण में जाता है भगवान उसे कभी नहीं त्यागते, शरण में रख लेते हैं, कितना हूं पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, चाहे सज्जन हो चाहे दुर्जन, उनका यह स्वभाव है, आप भी तो उन्हीं के भक्त हैं, मैं आपकी शरण में आए हूं और इस समय मैं कहां जा सकती, आप मुझे आश्रय नहीं देंगे तो मुझे कौन आश्रय देगा, आप मुझे अपने शरण में रख लीजिए। जब ऐसी बात कही आप तो मुनिवर द्रवित हो गए, कि बात तो सही बोल रही है, ठीक है जाओ उस कमरे में रह जाओ, एक कमरा दिए और कहे भी कि इस कमरे को मत खोलना, ठीक है नहीं खोलूंगी, और कमरे में प्रविष्ट हो गई, कमरे को लॉक कर दी, बंद कर दी। इसके बाद अब जैमिनी अपने बेड पर गया, तो जैमिनी ने तो देखा था उसके नख से सिख तक, उसके शरीर को अंग प्रत्यंग को, जब शयन करने गया अब स्त्री की छवि जैमिनी के मानस पटल पर आ गया, उसकी सुंदरता ने जैमिनी को मात कर दिया, एकदम पागल बना दिया। चिंतन करते करते जैमिनी को अंदर मतलब व्यग्रता आ गई, जोश आ गया विषय वासना का, कामदेव सवार हो गए जैमिनी के ऊपर। अब जैमिनी जाता है, किवाड़ खटखटाता है, खोलो खोलो, स्त्री ने कहा कौन, कि मैं जैमिनी, क्या बात है, दरवाजा खोलो, क्यों खोलो, आपने तो कहा है कोई बुलाए खोलो मत, मैं दरवाजा क्यों खोलूं, मैं नहीं खोलूंगी। स्त्री ने नहीं खोला, लेकिन काम का इतना वेग था, कामदेव इतना स्वार थे जैमिनी के ऊपर, वासना का इतना तूफान था कि वासना की तूफान से जैमिनी उस कुटिया की छज्जा पर जा चढ़ा, छप्पर पर चढ़ गया जो फूस की कुटिया थी, और ऊपर जाकर के उसने छप्पर को फाड़ दिया, देखिए वासना का ये तूफान, और फाड़ करके सीधे नीचे कूद पड़ा जहां वो युवती स्त्री बैठी थी। तो जब ही वो कूदा उसी समय झट से वो तो वेदव्यासी नारी का रूप धारण कर लिए थे, तुरंत वेदव्यास के रूप में हो गए। जब कूद कर नीचे आया और ऐसे दृष्टि देखा तो वहां वेदव्यास जी दिखाई दिए, स्त्री नहीं दिखाई दी। अब तो सारा काम भाव उसका शांत हो गया और कहे हे गुरुदेव आप जीते मैं हारा, मैं मान गया माया बहुत प्रबल है, विद्वानों को भी पछाड़ती है। तो कहने का भाव यह है कि आप कथा कहने जाते हैं, चाहे गुरु हो चाहे कुछ भी हो, ज्ञानियों को विद्वानों को माया ज्यादा पछाड़ती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। माया ऐसी होती है ना जो बंदर बना देती है, पागल बना देती है, नारद को भी बंदर बना दिया था माया ने विश्वमोहिनी के प्रसंग में, देखिए जो नारद जी बता रहे हैं अपना अनुभव दे रहे हैं, उसने भी नारद जी को बंदर बना दिया थोड़ा समय के लिए, ऐसी माया होती है बंदर बना देती है। जब आदमी माया को देखकर भूल जाता है ना, माया को देखकर भूल जाता है अपने स्वरूप को, माने भगवान को भूल जाता है और उसी के चखने में जीवन का सारा समय व्यतीत कर देता है। तो इसमें वर्णन ये आता है, भूलना नहीं चाहिए भाई, सावधान हो रहना चाहिए। याद रखिए वासना बहुत प्रबल है, सबके लिए सावधान किया जा रहा है, मर्यादा में रहनी चाहिए। जैसे वासना को देखकर मनुष्य इतना पागल हो जाता है, वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि संसार में दो पक्षी ऐसे हैं जिनको दिन और रात में दिखाई नहीं देते हैं। जैसे उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है और कौवा को रात में नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो कमांड व्यक्ति होता है, जो निर्लज व्यक्ति होता है, उसको दिन और रात दोनों में नहीं दिखाई देता है। वो मंदिर में भी आता है तो स्त्री का गलवाही किए रहता है, सुने है ना, हाथ पकड़ करके चलता है, उसको ये लज्जा नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां आया हूं। देवी सवार है उसके ऊपर, माया सवार है, उसकी बुद्धि को हर लिया है, माया बुद्धि को हर लेती है, विवेक को हर लेती है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, अंधा हो जाता है, कितना हूं कहिए, निर्लज हो जाता है। तो माया सबको परेशान करती रहती है। कभी कभी डिवोटी लोग भी ऊपर से धोती नीचे से फुल पैंट पहन के निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं तमोगुणी, असभ्य लोग, सभी की बात नहीं कही जा रही है। माने माया ऐसी बलौती है, ऐसी परेशान करती है कि व्यक्ति को निर्लज बना देती है, बुद्धि को खराब कर देती है। इसलिए व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। रामायण में एक दोहा है कि दीप शिखा सम ज्योति तना मनजन हो ही पतंग, और काम सदा सत्संग करही सदा सत्संग। मतलब जो ज्योति का शरीर होता है दीपक के लौ के सदृश होता है। जैसे दीपक को जलते देख जो पतिंगा होता है वो पागल हो जाता है और उस दीपक के ऊपर अटैक करता है, उसको स्वरूप बहुत अच्छा लगता है, और जाकर जब ही उस दीपक के लौ को पकड़ता है उसके पंख जल जाते हैं, जल करके वो भस्म हो जाता है। तो स्त्री का जो शरीर है काम, जिसको बोलते हैं मद, मद देखिए संसार का सब तज ही काम मद लोभ सब करही सदा सत्संग। माने व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, मद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मद का अर्थ होता है घमंड। इस संसार में चार ऐसे मद हैं, जैसे धन का है ना, विद्या का, पुष्ट का, समझ रहे हैं ना, और ये सब मद होते हैं। मतलब व्यक्ति जब पुष्ट पर जाता है, पद पर जाता है, तो घमंडी हो जाता है, जिसके बाद द्रव्य पैसा हो जाता है तो उस उपभोग करने के लिए वो गलत कार्यों में लगाता है। तो जो घमंडी व्यक्ति होता है इसका मिसयूज करता है। तो कहते हैं कि मिसयूज मत करो, मद में मत आओ, घमंड को दूर करो और साधु संघ में आओ। साधु संघ में आने से तेरी बुद्धि की शुद्धि होगी। तो आगे कहते हैं याच मानम अधीरवत। जो राजा थे पुरंजन, वे अधीर हो गए। अधीर का मतलब है अपनी धीरता को खो दिए। अधीर, धीर किसको कहा जाता है, गीता में भगवान कहते हैं, देहनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। जो शरीर को जानता है कि नश्वर है, नश्वान है, आत्मा को जानता अमर है, परमात्मा को जानता है, जो आत्मा को परमात्मा को जानता है उसको धीर कहा जाता है, समझिए ना। और जो आत्मा को परमात्मा को नहीं जानता है, केवल भौतिक देह में आसक्त रहता है, उसको अधीर कहा जाता है। तो ये अधीर हो गए, अपने स्वरूप को भूल गए। तो व्यक्ति को अधीर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धीर होना चाहिए। जानिए कि ये शरीर मांस का लोथड़ा है, कुछ नहीं है, कब तक इसको इसके थूकलार को चाटते रहोगे, चूसते रहोगे। ऊपर उठो, अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। भगवान के हम अंश हैं, अपने अंशी से मिलें, भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें और दिव्य आनंद को लूटें। इस भौतिक रस को, विषय रस को छोड़ो और दिव्य रस को पान करो। दिव्य रस क्या है, भक्तों का संग, साधु संग, भगवान की सेवा, भगवान का नाम रस पान करना, इसको दिव्य रस कहा गया है। भगवान के सौंदर्य को निरखना, जिसमें हाड़ मांस नहीं है, जो सच्चिदानंद है, सचित आनंद से बना हुआ है, जो दिव्य है। और ये रस विषय रस है, इसको तो बहुत चाट लिए हैं, कब तक चाटते रहोगे, ऊपर उठो, छोड़ो, साधु संग में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभ्यनंद तत्म वीरम हसंती वीर मोहिता। जब राजा ने इस प्रकार याचना किया उसको शरीर को मांगा भोगने के लिए, तो पुरंजनी भी हंसती हुई है ना, उसके वचनों का स्वागत करती हुई अपने शरीर को अर्पण कर दिया और कहा कि आप अपनी इच्छा को पूर्ण कीजिए। उसकी वाजू उसकी भुजाओं में आ गई। पुरंजन अब उसको आलिंगन करने लगा और भौतिक रस का पान करने लगा, विषय रस को चखने लगा। कहने का भाव यह है कि यहां नारद जी सावधान करा रहे हैं कि मनुष्य को विषय रसों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि जब तक आप विषय रस को चखते रहेंगे तब तक आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े रहेंगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। बहुत विषय जीवन बहुत दुखमय जीवन है और नारकीय जीवन है, 84 के चक्कर में आप पड़े रहेंगे, वैकुंठ नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसे ऊपर उठे। कोई कहे कि हम इसी को भोगते रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? याद रखें, विषय जीवन क्या है? चबाए हुए को चबाना विषय जीवन है। पुनः है पुनस चर्वित चर्व राणाम, चबाए हुए को चबाना। हम लोग चबा चुके हैं और देवलोक में जाकर के अप्सराओं को चबा चुके हैं, है ना, सभी जोनियों में जाकर के आप चबा चुके हैं, जलचर थलचर नवचर, और इस जीवन में भी चबा रहे हैं। कब तक चबाते रहोगे? ऊपर उठो। कहते हैं जो विषय जीवन को अर्थात भौतिकवादी जीवन की तुलना सूकर से की गई है, जो सूकर है वो मल खाता है, समझे, उसके सामने यदि खीर रख दीजिए, हलवा पूरी रसमलाई रख दीजिए, तो उसको नहीं खाएगा। तो विषय जीवन मल खाने का जीवन है, थुकलार चाटने का जीवन है, समझ गए ना। हमारा वास्तविक जो भोजन है आध्यात्मिक भोजन है, तो सुकर के समान जीवन मत व्यतीत कीजिए। आप मानव हैं, आप में क्षमता है कि आप वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप साधु संघ में आइए, वैष्णवों का संग कीजिए और उसे ऊपर उठिए। तो माया बहुत प्रबल है और माया को भगवान ने इसलिए बनाया है जो जीवों को पकड़ करके रखें। अगर माया से यदि हमें ऊपर उठना है, हमें भक्ति महारानी की शरण में जानी चाहिए। दोनों स्त्री हैं, एक फंसाने वाले और एक छुड़ाने वाले। तो भक्ति महारानी की शरण में जो आ जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए साधु संघ पर जोर दिया गया है। साधु संघ सर्वशास्त्र कहे, लौ मात्र साधु संघ सर्वसिद्धि है। तो भाव यह निकला कि सुकर उत्तम वस्तु का टेस्ट नहीं करता है, गंदी वस्तु को खाता है, है ना। लोग बोलते हैं ना हायर टेस्ट लोअर टेस्ट। अरे लोअर टेस्ट आप अनेक ब्रह्मांडों में ले चुके हैं, लेते आ रहे हैं, हायर टेस्ट तो लीजिए। हायर टेस्ट भैया क्या है? वही भगवान की भक्ति को चखना, भक्ति करना हायर टेस्ट है। भगवान के स्वरूप को देखना, उनके प्रसाद को खाना, ये सब हायर टेस्ट है। आध्यात्मिक जीवन हायर टेस्ट है और भौतिक जीवन लोवेस्ट टेस्ट है, जो आपको नरक में ले जाने वाला है जीवन है। इसलिए ऊपर उठिए, यह है इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य। तो हमें पुरंजन नहीं बनना चाहिए, पुरंजनी में आसक्त नहीं होनी चाहिए। बुद्धि पुरंजनी है तो व्यवसायत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए और बुद्धि को अपने बुद्धि को भगवान के चरणों में लगानी चाहिए। सबके पास बुद्धि है, सबके पास स्त्री है, जबरदस्ती उसे भगवान के चरणों में लगाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? बोलिए महाराज।
हरे कृष्णा। बहुत हाँ, सुंदर सुंदर क्लास दिया आपने, ब्रह्मचारी क्लास हो गया एक। प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न था, पहले भी जब पढ़ रहा था तो ये क्वेश्चन आया था, किसी से पूछ नहीं पाया। आपने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की
हाँ,
तो उन्होंने उस समय स्त्री नहीं बनाई थी, पुरुषों को बनाया
हाँ,
और पुरुष यहाँ वहां भागने लगे
हाँ
तो फिर आपने कहा कि चार कुमार थे और चार कुमारों को उन्होंने कहा गृहस्थ बनो.
हाँ
पर जब लोग भाग गए तब उन्होंने स्त्री बनाई. उसके बाद स्त्री बनाया उन्होंने. तो जब चार कुमार हुए और उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि गृहस्थ बनो और संतति करो तो स्त्री तो थी नहीं तो गृहस्थ कैसे बनते.
क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत सृष्टि किए. वो नहीं हुए तो पुनः फिर सृष्टि किए, प्रजापतियों की रचना किए, वशिष्ठ को